सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वर्चायाणं नमो लोये सौवसाहूणं सिद्धादद्दट्टमला विशुद्धबुद्धियेलत्थ सौवत्था तिहुवणशिरसे हरया पश्यन्तु भडारया सौवे तिहुवणभवनपसर्य पच्छक्कवबोहकिरणपरिवेढो उयो वियणत्थवणो अरहन्तदिवायरो जयौ तिरयणखग्गणिहाये णुत्तार्यमोहसेण्णशिरणिवहो आयरियराउपशिवौ परिवालिय भवियजियलो अण्णानन्दयारे अणोरपारे भमन्तभवियाणम् उज्जोजेहिको पश्यन्तु सया उवच्छाया दुहतिवति सा विनडिय तिहुवणभवियाणसुठुरायेण परिठवियाधम्मपवा सुजलवाणपयाणेन सन्धार्यशीलहरा उत्तार्यचिरपमाददुःशीलभरा साहूजयन्तु सौवे शिवसुहपः सन्ठियाहु निगलयभया। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की थी, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। ये नवमी पुस्तक जो धवला की है, चतुर्थ खंड वेदना, उसमें कृति अनुयोग द्वार की अभी हमारी चर्चा चल रही है। उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 135 पर आ गए हैं, 135। भाई हम जो नमोकार मंत्र कहते हैं ना, सभी हम बोलते हैं, ये इसी षटखंडागम ग्रंथ की पहला सूत्र है नमोकार मंत्र। वहां से वो पद्धति चली आई है और हम सब नमोकार मंत्र को बोलते हैं। अब यहाँ बात ये हो रही थी कि ग्रंथ कोई भी शुरू करते हैं तो उसके पहले में पहले छह बातें होती है। मंगल किया जाता है, मंगल में पंच परमेष्ठियों का स्मरण नमन किया जाता है उसमें। उसके बाद क्या होता है, हेतु यानी उसका निमित्त, किसके निमित्त ये ग्रंथ रचा है उसको बताते हैं कि शिष्यों के लिए समझाने के लिए ग्रंथ की रचना होती है। फिर उसका प्रमाण कितना है ग्रंथ का, कितने बड़े हो गए, उसके पद कितने हो गए, उसकी रचना उसको बताते हैं। उसके बाद उसका कर्ता कौन है और ये ग्रंथ की प्रमाणता क्या है, प्रमाणता यानी वही सच्चा कैसे है, आदि जो बातें बताई जाती है उसको कहते हैं वो ग्रंथ की शुरुआत में। तो उसकी बात हमने बहुत विस्तार से देखी थी। अब ये ग्रंथ की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसका कनेक्शन भगवान महावीर से जो बात निकली थी दिव्य ध्वनि के द्वारा, उसमें से जो 12 अंगों की रचना हुई थी उसमें से कितने ही अंग और पूर्वों का ज्ञान अभी नहीं रहा, परंतु थोड़ा थोड़ा ज्ञान रहते रहते अभी जो ये षटखंडागम की ग्रंथ की रचना हुई है उसका कनेक्शन वहाँ तक कैसे लगता है, कौन से अधिकार से कौन सी बात कहाँ कैसे आई है, उसकी बात हमने ये 45 नंबर के सूत्र के द्वारा 134 पृष्ठ पर देखी थी। उसमें जब ग्रंथ की रचना होती है उसको कहते ग्रंथ का अवतार होना यानी उत्पत्ति होना। तो ग्रंथ की उत्पत्ति में चार बातें बताई जाती हैं या चार प्रकार का उसका अवतार होता है। तो उसमें हमने कल देखा था 134 पृष्ठ पर नीचे से चौथी लाइन, सब ग्रंथों का उपक्रम, निक्षेप, अनुगम और नय, इस चार प्रकार का अवतार होता है। तो उपक्रम किसको कहना, तो अर्थ को अपने समीप करता है, यानी अर्थ समझ में आता है। तो उपक्रम के भी कुछ भेद बताएंगे, निक्षेप के, अनुगम के और नय के, सबके भेद बताएंगे। ये सारा ही विषय हमारे धवला पुस्तक एक में बहुत विस्तार से हो चुका है, अब यहाँ पुनः दोबारा देख रहे हैं। अब ये उपक्रम के भी और भेद होते हैं, नीचे से दूसरी लाइन में हमने देखा था कल। अनुपूर्वी यानी अनुपूर्वी उपक्रम, नाम उपक्रम, प्रमाण उपक्रम और वक्तव्यता उपक्रम और अर्थाधिकार उपक्रम। अब इसकी बात हमारी चल रही है, उसमें हमने अनुपूर्वी उपक्रम किसको कहना, तो अनुपूर्वी यानी किस क्रम से हम वो बात बता रहे हैं। जैसे हमें 24 तीर्थंकरों को नमस्कार करना है, तो हमने ऋषभ से लेकर 1, 2, 3, 4 से 24 तक महावीर पर्यंत नमस्कार किया, एक एक का नाम लिया, तो हमने क्रम से शुरू से अंत तक लिया, तो उसको कहते हैं पूर्वानुपूर्वी, क्रम से लिया। उल्टे क्रम से अगर हम कहते 24, 23, 22 इस तरह से कोई भी बात कहनी है, उसका नमस्कार करना है, जो कुछ है, तो उल्टा क्रम है, तो उसको कहते हैं पश्चादानुपूर्वी। कहीं से भी किसी तीर्थंकर का वर्णन करें, अभी जैसे हमने नेमिनाथ भगवान की बात की, वो कहाँ जन्मे, कैसे हुए, कहाँ से मोक्ष गए, तो किसी क्रम बिना किसी का कथन करते हैं, तो उसको कहते हैं यथा तथा अनुपूर्वी। तो ये बात हमने कल देखी थी। अब उपक्रम में से दूसरा प्रकार, देखिए उपक्रम के हमने 5 प्रकार देखे कल, अनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकार। अब उपक्रम का, अनुपूर्वी का अभी हमने देखा, अभी उपक्रम में नाम उपक्रम जिसको कहते हैं उसके भेद बताएंगे। ये किसी चीज का जो नाम पड़ता है या रखते हैं, वो किस अपेक्षा से उसको नाम पड़ता है उस चीज को, या तो हम बच्चों का अपने मर्जी के अनुसार नाम रख देते हैं, एक बात, या किसी द्रव्य के संयोग से भी कोई नाम पड़ते हैं, जैसे कोई छतरी का धारक है, वो छतरी वाला है, वो चश्मे वाला है, वो दंड यानी लकड़ी वाला है, आदि आदि, उसके संयोग की अपेक्षा भी कहने में आता है। जो कोई जिसका व्यवसाय है, जो कोई नर्तक है, कोई गायक है, ऐसे भी नाम होते हैं। या प्रधानता जहाँ है, जैसे हम कहते हैं ये आम्रवन है, ये नीम वन है, वहाँ अन्य वृक्ष नहीं है, वो बात नहीं है, प्रधानता किसकी है उसकी अपेक्षा से भी वो नाम पड़ते हैं। ऐसे उसमें बहुत सारे भेद है, जैसे कोई अवयवहीन है तो हम कहें लंगड़ा है, काना है, अंधा है, क्यों, वहाँ कुछ अवयव कम है, तो ऐसे अलग अलग नाम क्यों पड़ते हैं उसके यहाँ भेद बताए हैं। गौण्य पद, अभी इसका अर्थ भी देखेंगे बाद में, पहले वे नाम कौन कौन से उसको कहते हैं, ये नाम उपक्रम के ये भेद यहाँ बता दें, 10 भेद बताने वाले हैं। गौण्य पद, नौगौण्य पद, तीसरा है आदान पद, चौथा प्रतिपक्ष पद, पांचवा प्राधान्य पद, छठा नाम पद, सातवा प्रमाण पद, आठवा अवयव पद, नौवा संयोग पद और अनादिक सिद्धांत पद, ऐसे 10 हो गए ना। ऐसे भेद से नामोपक्रम 10 प्रकार है। नाम उपक्रम, उपक्रम यानी हमने देखा ना ग्रंथ की उत्पत्ति का जो कुछ वहां से, जिसके कारण अर्थ जानने में सुविधा होती है, उसको उपक्रम कहते हैं। उसमें ये नाम 10 प्रकार से आते हैं, उसकी बात आ गई। अब एक एक का अर्थ बताएंगे। गौण्य पद किसको कहना, जो पद गुण से सिद्ध है वह गौण्य है, यानी उसको गौण्य पद नाम कहेंगे। जो नाम गुण की मुख्यता से पड़ा है उसको गौण्य पद नाम कहेंगे। जैसे सूर्य के तपन, सूर्य का एक नाम तपन भी है, वो तपता है ना, तो वो तपन। भास्कर, उसकी प्रभा है, तेज है, तो उसको भास्कर कहते हैं। एवं दिनकर नाम है। वर्धमान जिनेन्द्र के सर्वज्ञ वीतराग अरहंत व जिन आदि नाम है, उनके गुणों के अनुसार हम कहते हैं ना सर्वज्ञ है वो, तीन काल तीन लोक का आलोक सहित उनको ज्ञान है, तो उनके सर्वज्ञ हम कहते सर्वज्ञ कह के कहते हैं, या वीतराग वो पूर्ण वीतरागी है तो सर्वज्ञ वीतराग भी कहते हैं उनको, अरहंत और जिन आदि नाम है। अभी नौगौण्य पद यानी उसमें कुछ गुण की अपेक्षा कोई नाम नहीं है, जैसे हमने नाम कुछ भी रख दिया, मराठी में कहावत है नाव लक्ष्मीबाई और हाथी कतलाचा वाला, यानी इतनी गरीब है और नाम क्या है लक्ष्मी है, तो ये जो नाम रखते हैं वो कुछ गुण की अपेक्षा नहीं रखते, हमें जो पसंद आए वो रखते हैं। जैसे दिगंबर वस्त्र भंडार दिगंबर यानी जो वस्त्र नहीं पहनता उसको दिगंबर कहते हैं आपने ऐसे नाम पढ़े होंगे तो चंद्र स्वामी सूर्य स्वामी इंद्र गोप इत्यादि नाम नौगौण्य पद है। एक किसी कीड़े का नाम है ना इंद्रगोप कीड़ा, आपने नाम सुना है कहीं प्रथमानि युग में इंद्रगोप, आपको पता है इंद्रगोप नाम के ऐसे जो कीड़े होते हैं, जैसे वो ये बरसात के दिन में हम देखते ना सुरवंट या ऐसे कोई, हाँ द्विंद्रिय जीव है वो, ईयर जैसे कोई होते हैं, तो इंद्रगोप इंद्रगोप कोई आपको याद आता है कि किसी जीव ने इंद्रगोप की पर्याय पाई थी और बाद में मोक्ष गए थे? हाँ कौन कौन आधा ही याद आया, भरत के 923 पुत्र थे, निगोद से निकले थे और निगोद से निकलकर इंद्रगोप की पर्याय पाई उन्होंने, और वहां से भरत चक्रवर्ती के पुत्र होकर जन्मे और जन्म से गूंगे थे, बोल नहीं थे, तो समोचरण में भरत को प्रश्न हुआ मन में कि ये ऐसे क्यों नहीं बोलते भगवान, ये कब बोलेंगे, तो उसके उत्तर दिव्य ध्वनि में आया। अभी दिव्य ध्वनि का हमने स्वरूप देखा है कैसे कैसे, प्रत्येक जीव अपने ज्ञान की योग्यता के अनुसार अपने प्रश्नों के अनुसार उसके उत्तर पाते हैं, तो दिव्य ध्वनि एक ही और उसमें सभी जीवों को अपनी अपनी भाषा में और अपने अपने प्रश्नों के सब समाधान हो जाते हैं। तो उसमें क्या उत्तर आया उसका, ये बोलेंगे कि नहीं, तो बोलेंगे, तभी उन्होंने क्या बोला, हे भगवान हमें जिनेश्वरी दीक्षा दीजिए, मुनि दीक्षा ली और उसी भाव में मोक्ष चले गए भरत के पहले। तो ये इंद्रगोप नाम आया था वहां, परंतु इंद्रगोप यानी वो इंद्रधनुष आदि जो कुछ है उसका उसका नाम से कोई संबंध नहीं है, ये नौगौण्य पद है, इतनी बात चल रही अपनी।
इसका अर्थ क्या है, जो जीव निगोद में था वहां से वो आया था दो इंद्रिय पर्याय में, तो दो इंद्रिय पर्याय में ऐसा कौन सा शुभ भाव किया होगा कि जिसके कारण उसको मनुष्य पर्याय मिली, और वो भी चक्रवर्ती के पुत्र हुए, और उस समय भी क्या हुआ कि उसी भाव में से वो मोक्ष गए। यानी ये जो मानते हैं ना शुभ भाव करने से हमको मोक्ष होगा, देखो अभी हम पंचेंद्रिय जीव है, शुभ भाव कर करके थकते हैं, और वहां कौन सा शुभ भाव किया होगा एक इंद्रिय पर्याय में और दो इंद्रिय पर्याय में। तो ये जो बात है ये हमें बिल्कुल, ये प्रथमान योग की कथाएं सुनकर भी हमें विचार करना चाहिए कि क्या ये हमारी मान्यता है और ये जो शास्त्र में जो बातें हैं क्या वो मेल खाती हैं।
या तो उन्होंने एक पर्याय पाई थी, पर कितने ही जीव ऐसे हैं निगोद में से निकलकर डायरेक्ट मनुष्य में आते और उसी भूमि में मोक्ष भी जा सकते बादर निगोद में से। अब हम आगे बढ़ेंगे, अपना नाम का प्रकरण चल रहा है ना, नौगौण्य पद है, नौगौण्य ने उनमें उस गौण्य ने गुण गुण से जो निकला है वो गुण, उनमें जो गुण देखे जाते उसकी अपेक्षा जो नाम होते वो गौण्य पद, और वो बिना किसी गुण की अपेक्षा कोई भी नाम होता है उसको नौगौण्य पद कहते हैं।
आपको नहीं समझा, नाम है अश्विन और है इंजीनियर, अश्विन समझते आप क्या होता है, जो डॉक्टर होता है ना देव के जो डॉक्टर होते हैं वो अश्विन कहलाते हैं, यक्ष होते हैं, तो अश्विन। अब यहाँ दादर में भी है ना अश्विन नर्सिंग होम,
अश्विनी
अश्विनी जो भी है, मतलब ये है कि नाम अलग है और बाकी सब बातें अलग है, ऐसा होता है? उसमें क्या है, नाम वर्धमान है और काम तो कैसा करे पूछो मत ही।
देखो, क्योंकि इन नामों से युक्त पुरुष में शब्दों का अर्थ नहीं पाया जाता, उनके नाम का जो अर्थ है वो उन पुरुष में वह गुण नहीं पाया जाता। अब आदान पद रूप नाम बता रहे हैं, आदान पद का अर्थ किसी संयोग की अपेक्षा उनको वो नाम पड़ता है। जैसे दंडी, दंडी यानी दंड वाला, ये संस्कृत शब्द है। छत्री यानी छत्र का धारक, वो छत्री, ये छत्री यानी छाता नहीं समझना। मौली, गर्भिणी और अविधवा, अविधवा यानी सौभाग्यवती जिसको कहते ना, इत्यादि आदान पद रूप नाम है, क्योंकि जो संयोग में उनके द्रव्य है उसके निमित्त से ये उनका नाम पड़ गया है। क्योंकि वे छत्रादि इसके है, इस विवक्षा से उत्पन्न हुए, यानी दंड इसका है, इसका छत्र है, इसका जो कुछ ये गर्भ के साथ है, इसे गर्भिणी कहा ना, इस तरह। ज्ञानी व बुद्धिमान इत्यादि नाम आदान पद ही है, क्योंकि इनका कारण यह इसके है, यह विवक्षा है। ये गौण्य पद नहीं है, क्योंकि संबंध विवक्षा के बिना, गौण्य पद यानी उसमें वो गुण पाया जाता है इसलिए वो नहीं है। ज्ञान गुण तो सब में है, परंतु विशेष वहाँ संबंध है उसका। द्रव्य में गुण संज्ञा की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती। अब जो उसके उल्टा लेना, आदान पद में भी कि संयोग से रहित की अपेक्षा उसके नाम पड़ेंगे। अभी दंडी, छत्री आदि तो उसके पास है, जैसे हम चश्मे वाला कहेंगे, तभी जिसके पास वो नहीं है उस अपेक्षा से भी कुछ नाम पड़ते हैं। कैसे? देखो, विधवा यानी वो जिसका भी पति मर गया है। हाँ, दिखते तो गौण्य पद जैसे ही, क्यों ज्ञानी है, बुद्धिमान है, बुद्धि वाला हम कहते ना, परंतु वो वाला लगाए ना उसके साथ, इसलिए उसमें हाँ बुद्धिमान यानी ज्ञानी, ज्ञान वाला, इस तरह से उसका संबंध बताने वाला वो वाचक शब्द है।
देखो, आपका कहना है ज्ञानी है गौण्य पद जैसा लगता है, लेकिन वो जब बालक था तब उसका नाम रखा था, तो उस समय तो वो ज्ञानी है या चतुर है या कैसा है वो तो मालूम नहीं है। ये बाद में संयोग की अपेक्षा या वियोग की अपेक्षा, यानी संयोग नहीं है उस अपेक्षा से नाम लगाएंगे। अभी तो संयोग की बात बताई, छत्री, दंडी, अभी उसके आगे जो संयोग में नहीं है इस अपेक्षा से भी नाम होंगे।
जैसे हम कहेंगे धनहीन है, यानी धन से रहित हो गया, धनहीन कहेंगे, वस्त्रहीन है। हाँ, तो यहाँ लिखते देखो, विधवा यानी जिसका भी पति नहीं है, मर गया, तो उसको कहेंगे विधवा। रान उसी अर्थ में है। पोर, पोर यानी अनाथ बालक को कहते हैं पोर। पोर का ऐसा भी शब्द आपने सुना होगा, ये मराठी में ऐसे शब्द है। हाँ, वह दुर्विध, दुर्विध है यानी धनहीन इत्यादि। अथवा अगर्भिणी, अमुकुटी यानी मुकुटहीन इत्यादि प्रतिपक्ष पद है, यानी वो संयोग है नहीं है उसको बताने वाले हैं। क्योंकि ये पद यह इसके नहीं है, इस विवक्षा के निमित्त से है। अब प्राधान्य पद बताएंगे। अन्य भी वृक्षों से सहित कदंब, नीम व आम के वृक्षों के बाहुल्य की अपेक्षा, जहाँ आम के ज्यादा वृक्ष है, अन्य वृक्ष नहीं है वो बात नहीं है, बाहुल्य यानी उसकी प्रधानता, उसकी मेजोरिटी, तो हम कहेंगे उसको, उस वन को हम कहेंगे, उस बगीचा को आम्र वन है या नीम वन है। अन्य वृक्ष है फिर भी प्रधानता से, बहुलता से कौन से है उसकी अपेक्षा वहाँ नाम क्या लिखते हैं? कदम्ब वन, नीम्ब वन, आम्र वन, ये सारे प्रधान पद नाम है। शंका, यहाँ प्रधानता क्या है? उसका समाधान, विवक्षित की प्रधानता है। विवक्षित यानी हम जिनकी बात कर रहे हैं, जैसे हम आम्र वन में आम, ये विवक्षित हुआ, जिसकी हम बात करते हैं उसको विवक्षित कहा जाता है, तो उसकी प्रधानता है। और अविवक्षित की अप्रधानता है, क्योंकि इसके बिना प्रधानता बन नहीं सकती। अरविंद शब्द की अरविंद संज्ञा नाम पद है। संज्ञा नाम पद यानी वही नाम, नाम पद जो है ना, नाम पद, प्राधान्य के बाद नाम पद लिखा था, यानी कुछ भी नाम रख देना उसको नाम पद कहा था। नाम पद और पहले नौगुण्य पद, यानी उस शब्द का मीनिंग कुछ है परंतु वहाँ उस वैसा उसका अर्थ नहीं, ऐसा हमने देखा था। और यहाँ नाम पद यानी जो कुछ हम नाम रख देते हैं वो नाम पद हो जाता है, क्योंकि नाम की प्रवृत्ति अपने में ही देखी जाती है, वो नाम से ही वो पहचाना जाता है, उसमें कुछ और भी उसमें कोई प्रवृत्ति अन्य नहीं है। अब प्रमाण पद, शत सहस्र इत्यादि प्रमाण पद है, प्रमाण पद नाम है क्योंकि वे संख्या निमित्तक है। ये तो संख्या निमित्तक प्रमाण हुआ। अब हम कहेंगे रे एक शेर है या लीटर है मीटर है जो कुछ है, यहाँ तो केवल संख्या बताई, परंतु नापने का जो कुछ मेजरमेंट जो कुछ हो गए उस सबको हम प्रमाण पद कहेंगे, प्रमाण नाम पद, प्रमाण पद नाम, यानी उसमें वो सेकंड है आवली है वो भी उसमें आ जाएगी कि एक घंटा हम कहेंगे तो ये प्रमाण पद कहलाएगा। अवयव दो प्रकार है, ये अवयव नाम जी ना, अवयव पद नाम, उसके दो प्रकार होंगे, समवेत और असमवेत। समवेत असमवेत का अर्थ कोई अवयव है परंतु वो नेचुरल नहीं है, कोई विकृति है उसमें, रोग के कारण उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है जो कुछ, और जो कम होता है वो उसमें हीन हो जाता है, जैसे हाथ टूट गया पैर टूट गया कान नहीं है आँख नहीं है, तो इसे दो प्रकार से समवेत यानी सहित, असमवेत यानी रहित, यानी अवयव से सहित और रहित, यानी कभी कभी वो रोगादिक के निमित्त से कोई अवयव बढ़ जाते हैं ना, जैसे कोई सूजन आ जाती है पैर में या कोई हाथी रोग हो जाता है। यहाँ लिखा है उसके शिलीपद, शिलीपद यानी मेरे वो यही होना चाहिए जिसको हम हाथी पग कहते ना, फाइलेरियासिस, उसके कारण ये पैर ऐसा बड़ा हो जाता है, पैर ही के अन्य अन्य अवयव भी बड़े हो जाते हैं। गलगंड, गलगंड यानी मम्स, गाल बड़े हो जाते ना ऐसे, यहाँ पर ये सूजन आती है, इसकी दीर्घ नाम एवं लंबकर्ण, ये नाम उपचित अवयव ने रोगादिक के निमित्त से या अन्य किसी निमित्त से कोई अवयव बढ़ जाते हैं तो उसको उपचित अवयव कहते हैं, अर्थात अवयवों की वृद्धि के निमित्त से, या किसी जन्म से किसी के कान लंबे हो गए तो हम कहेंगे नहीं ये लंब करने हैं इस तरह, तथा अभी कोई अवयवों की हानि के निमित्त से भी कुछ नाम पड़ते हैं, जैसे छिन्न कर, छिन्न ने जिसको हम थोटा कहते हैं, हाथ टूटा हुआ, छिन्न ने छेदा हुआ टूटा हुआ, कर यानी हाथ, छिन्न नाश यानी जिसकी नाक कट गई है ऐसा, काना समझते हैं आँख जिसकी नहीं उसको काना कहते हैं, एक आँख नहीं होगी तो, एवं कुंट किसे कहते हैं, जो कुछ है किसी अवयव का वह छेद हुआ है, इत्यादि नाम अवयवों की हानि के निमित्त से प्रसिद्ध है। ऊपर उपचित अवयव का है ना, यहाँ अपचय कहते उसके अवयवों का अपचय। अब संयोग पद के नाम की बात करेंगे, संयोग द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के भेद से चार प्रकार का है, उनमें धनुष असि व परशु आदि के संयोग से संयुक्त पुरुषों से धनुष असि व परशु नाम, पुरुषों के पुरुषों से पुरिसाणम पुरुषों के करना, पुरुषों के ठीक रहेगा, वो नाम पुरुषों का पड़ा है ना, यानी वो मनुष्य को ही धनुष कहेंगे, अर्शि कहेंगे या परशु कहेंगे। पहले हमने जो आदान में देखा था संयोग वाले में, तो वहाँ धनुष वाला कहेंगे वहाँ, परंतु यहाँ उस पुरुष को ही धनुष कहा है। जैसे ये हमने पहले भी उदाहरण देखा था कि यहाँ 100 धनुष दौड़ रहे हैं, यानी 100 धनुषधारी दौड़ रहे हैं। उन पुरुषों को ही, उन सैनिकों को ही धनुष कह देना। ये देखो तलवारें जा रही है, तलवार यानी तलवार थोड़ी जा रही है, वो तलवार पकड़ने वाले सैनिक जा रहे हैं। एक्चुअली हमें लगता नहीं ये आदान वाला ही होगा, और धवला पुस्तक एक में इसको आदान में ही लिया है, संयोग में, द्रव्य का संयोग। जैसे दंडी है, छतरी है, वैसे धनुष वाला वगैरह। परंतु धनुषधारी अगर कहेंगे, धनुर्धारी कह दे ना, धनुर्धारी नाम भी पड़ता है, आपने सुना है धनुर्धारी नाम किसका था? हाँ, अर्जुन का था। हाँ, तो ये धनुष असी व परशु, उस पुरुष को ही परशु कह देना, ये द्रव्य संयोग पद है। अब क्षेत्र के अपेक्षा से, किसी क्षेत्र के संयोग से कह देना, भारत, ऐरावत, माथुर और मागध, ये क्षेत्र संयोग पद नाम है। भरत के संयोग से इस क्षेत्र को भारत कहते हैं। ये एक्चुअली क्षेत्र के संयोग से, यानी जैसे इंडियन वगैरह ऐसा कहना चाहिए था ना, यहाँ क्षेत्र का नाम संयोग से पड़ गया है। ठीक है, शारद व वासंतक, ये काल संयोग पद नाम है। शरद नाम का ऋतु आपने सुना होगा और वसंत ऋतु, तो उस ऋतु की अपेक्षा से शारद और वासंतक ये नाम पड़ा है। शरद और वसंत ये क्या हो गए? हाँ, ऋतु है तो वो ये नाम पद होंगे, वो ऋतु के नाम है, परंतु उस ऋतु के नाम पर से शारद ऐसा जो है, ऐसा भी नहीं, विशिष्ट ऋतु में जन्मते हैं तो उसका नाम ही वैसे ही पड़ जाता है, या कोई महोत्सव करना है तो ये कहते ना वासंतिक महोत्सव, आपने सुना होगा, वसंत ऋतु में जो होता है उसको वासंतिक महोत्सव कहेंगे। तो उस ऋतु के नाम पर से जो नाम पड़ा है, यानी वो काल संयोग पद है। पहले तो ऐसी पद्धति होती, जैसे श्रावण मास में जन्म है तो लड़के का भी श्रावण नाम रख दिया, ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ ज्येष्ठ ऐसा कहते थे। अभी भाव संयोग पद, नारक, तिर्यंच, क्रोधी, मानी, बाल एवं युवा इत्यादि भाव संयोग पद है। फिर शंका, भाव और गुण में क्या भेद है? पहले हमने देखा था ना गौण्य नाम, उसके गुण है जैसे वैसे उसको नाम पड़ा था। अब यहाँ भाव में भी अभी क्रोधी मानी कहा, तो उसमें क्या भेद है? नहीं, गुण यावत द्रव्य भावी अर्थात द्रव्य के अंत तक रहने वाले होते हैं। यावत द्रव्य भावी, हमारी भाषा में द्रव्य का और गुण का संबंध कैसे है, नित्य तादात्म्य संबंध है। गुणों के समूह को ही द्रव्य कहते हैं, द्रव्य में से उसका कोई भी गुण त्रिकाल में कभी भी उससे भिन्न नहीं हो सकता, तो उसको गुण कहेंगे। और भाव, यहाँ जो भाव जो जिस अर्थ में है, भाव यावत द्रव्य भाव, यावत यानी जब तक द्रव्य है तब तक रहने वाला वो गुण है। और द्रव्य कब से कब तक रहता है? अनादि से अनंत काल तक, उसका कभी नाश ही नहीं होता है, ना ही नया उत्पन्न होता है। तो भाव जो है वो यावत द्रव्य भाव नहीं होते, यह उन दोनों में भेद है। हमने किसी को क्रोधी कहा तो वो अनादि अनंत जीव द्रव्य है, तो अनादि अनंत क्रोधी रहेगा कि नहीं रहेगा? वो तो उसका विकार है, सादि शांत है ना, पर्याय है उसके, उसके आदि भी है, शुरुआत भी है और उसको अंत भी है, इसलिए वहां वो उसकी पर्याय है कह सकते हम। पर्याय है द्रव्य की भी, परंतु वो कायम टिकने वाली नहीं। उसका द्रव्य का कैसा संबंध है? अनित्य तादात्म्य संबंध, इसलिए भाव यहां उस अर्थ में लिया है। शंका, द्रविड़, आंध्र, कर्नाटक, ये नाम कौन से पद है? ये द्रव्य संयोग पद है क्योंकि उनकी उत्पत्ति भाषा रूप पुद्गल द्रव्य के संयोग से है। वहाँ की भाषा द्राविड़ी है, है? तो द्राविड़ आदि जो भाषाएं हैं उसके संयोग से उनके नाम पड़े हैं। जैसे मराठी भाषा वो मराठा कहते ना, पहले मराठा कहते थे। हाँ शंका, प्रमाण और भाव के क्या भेद है? नहीं, स्वगत, स्व ने अपने गत अर्थात अपने वाच्यगत परिमाण के जानने का कारण प्रमाण, और इससे विपरीत भाव होता है। प्रमाण किसको बताता है? जिसको बताना है ना, विवाच्यगत परिमाण, परिमाण यानी उसका मेजरमेंट, प्रमाण जिसको बताता है उसका वो प्रमाण बताता है, या तो संख्या बताता है या कोई मीटर है, लीटर है, ये कटोरी भर है, ऐसे जो कुछ है उसको वो बताता है। और इससे विपरीत भाव होता है। इस प्रकार उन दोनों में भेद पाया जाता है। अब ये अनादि सिद्धांत पद ये रह गया है। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय, काल, पृथ्वी, अप और तेज, अप यानी जल, हाँ, इत्यादि अनादि सिद्धांत पद है। जैसे छह द्रव्य है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये नाम कब से चले आ रहे हैं? अनादि से, अनादि से ये ही नाम हो गए। प्रत्येक तीर्थंकर इन्हीं नाम से इन छह द्रव्यों को बताएंगे। जो कुछ ये भी काल है, पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है, जो कुछ है ये तो अनादि से चले आए नाम है, इसको अनादि सिद्धांत पद कहते हैं। भाव और गुण के प्रतिषेध द्वारा उत्पन्न नाम क्रमशः भाव संयोग पद व गौण्य पद होते हैं, क्योंकि अवयव शब्द के समान भाव और गुण को देशामर्शक स्वीकार किया गया है। देशामर्शक यानी थोड़ा बताए तो भी उसमें से बहुत सारे उसमें गर्भित होते हैं, इसको देशामर्शक कहते हैं। इसी का फिर दोबारा अर्थ समझाते हैं विशेषार्थ में। जिस प्रकार अवयव के सद्भाव व अभाव के वाचक पदों का अंतर्भाव, सद्भाव के यानी हमने देखा लंब कर्ण है, लंबोदर है, ऐसा जो कुछ होते हैं, और अभाव यानी अवयवों का अभाव यानी अभी हमने देखा था हाथ कट गया है किसी का, पैर कट गया है, लंगड़ा कहेंगे, काना कहेंगे, उनका अंतर्भाव अवयव पदों में होता है। अवयव पदों के ये दो भेद है, सहित वाले और रहित वाले। उसी प्रकार भाव संयोग व भाव संयोग वाचक पदों का भाव संयोग पदों में एवं गुण के सद्भाव व असद्भाव वाचक पदों का अंतर्भाव, अंतर्भाव ने उसके हम गर्भित कर देना, गौण्य पदों में करना चाहिए। इस प्रकार नामोपक्रम स्वरूप की प्ररूपणा की है। ग्रंथ के आदि में जो उपक्रम होता है उसमें हमने दो बातें बताई, पहले अनुपूर्वी उपक्रम और नाम उपक्रम। अब जो तीसरा जो है प्रमाण उपक्रम, उसको बताएंगे। हमने अभी अभी आते ही देखते हैं ना वो 134 पृष्ठ पर। अब ये जो है प्रमाण, हमने अभी तक बहुत बार जो देखा था, कोई भी चीज समझानी है तो उसको छह प्रकार से समझाते हैं। उसका नाम कह देना, उस वस्तु की अन्य किसी वस्तु में स्थापना कर देना, तो नाम प्रमाण, स्थापना प्रमाण, द्रव्य प्रमाण, क्षेत्र प्रमाण, काल प्रमाण और भाव प्रमाण के भेद से प्रमाण छह प्रकार का है। अभी उसमें नाम प्रमाण किसको कहना? उनमें से अपने व बाह्य पदार्थ में वर्तमान प्रमाण शब्द नाम प्रमाण कहा जाता है। प्रमाण ऐसा नाम कह देना, वो नाम प्रमाण है। हमें कोई चीज समझानी है तो पहले उसका नाम कुछ रखेंगे ना, तब जाके वो समझा सकते हैं। नहीं तो बार बार इसको देखो या ऐसा है, वो ऐसा है, वो किसकी बात कर रहे हैं? तो हम उसका नाम, जैसे हमने कहेंगे ये तो अभी ये पट्टी है, ये रबर है, तो रबर ही हमने नाम रख दिया उसका, फिर वो रबर की कोई विशेषता है उसको बताएंगे। इस तरह। शंका, नाम के प्रमाणता कैसे हो सकती है? प्रमाण यानी वो सही स्टैंडर्ड समा नहीं, क्योंकि जिसके द्वारा जाना जाता है वह प्रमाण है। प्रमाण किसको कहना है? जिसके द्वारा जाना जाता है, हम उसको नाम के द्वारा जान सकते हैं, तो यही उसमें प्रमाणता है। इस व्युत्पत्ति यानी वो शब्द कैसा तैयार हुआ, इस व्युत्पत्ति से नाम के प्रमाणता सिद्ध है, यानी किसी का नाम है वो भी उसका प्रमाण है। अब स्थापना प्रमाण कहते हैं, सद्भाव और असद्भाव रूप स्थापना का नाम स्थापना प्रमाण है। हमने देखा ना, ये सारे निक्षेपों के नाम है, ये प्रमाण पर घटित कर रहे हैं, किसी वस्तु को हमको जानना है या बताना है। जैसे किसी राजा की बात करनी है और हमने कोई चित्र बनाया राजा जैसा मिट्टी का, तो उसको कह ये राजा है कह दिया, और हमारे पास कुछ चित्र वित्र कुछ नहीं है, तो चार पांच कोई चीज़ें हैं, तो उसी में एक चीज़ को अभी ये रबर को मैंने कहा ये राजा है, और फिर दूसरा कुछ ऐसा बता दिया ये प्रधान है। जैसे हम शतरंज के उसमें कहते हैं ना, तो ये स्थापना हुई उसमें, इसको कहते हैं असद्भाव रूप स्थापना, कि जैसा शेप जैसा उसका कुछ फीचर्स नहीं है वैसे में उसको कह देना, ये असद्भाव स्थापना, जिसको अतदाकार कहते हैं। और तदाकार यानी जैसा उसका मूल वस्तु का आकार है वैसे आकार में स्थापना करना, उसको तदाकार स्थापना। हमारे जितने भी मंदिरों में मूर्तियां हैं वो तो पत्थर की मूर्ति है, हाँ, परंतु उस पृथक की मूर्ति में पंच कल्याणक द्वारा हम स्थापना करते हैं। वो तो सभी मूर्तियां तो दिखने में समान ही है ना, तो हम क्या कहते हैं ये महावीर भगवान है। ये हमने क्या कहा, क्या किया वहां पर, महावीर भगवान की उसमें स्थापना कर दी, और उसके साथ वैसा ही व्यवहार होता है जैसे महावीर भगवान के साथ हम करेंगे, तो उनके नमस्कार करेंगे, पूजन करेंगे, जो कुछ आदर सत्कार, तो साक्षात महावीर भगवान है ऐसे हम उसको जानते हैं, इसको कहते हैं स्थापना। अब यहाँ प्रमाण के बारे में चल रही है, तो प्रमाण में भी ये दो प्रकार की स्थापना होगी, सद्भाव और असद्भाव रूप स्थापना का नाम स्थापना प्रमाण है, क्योंकि वह अन्य पदार्थों के स्वरूप को जानने की कारण है। स्थापना हम किसी अन्य पदार्थ में करते हैं, परंतु उसके द्वारा हम कोई अन्य पदार्थ को जानना चाहते हैं। महावीर भगवान की स्थापना हमने पत्थर की मूर्ति में कर दी, अब उसको पत्थर करके उसके साथ व्यवहार नहीं होता, अब उसके साथ जो व्यवहार होगा वो महावीर भगवान जैसा होगा। कोई कोई ऐसे सियाने होते हैं, ऐसे कोई ऐसा ही कहीं छपकर आया था, किसी ने पूछा कि हमारे पास प्रतिमा जी है और वो फूट गई, क्या करें, हमें बहुत दुख हो रहा है, तो दुख होना तो स्वाभाविक है ना, यदि उसमें महावीर भगवान की कल्पना की है और हाथ से वो प्रतिमा जी फूट जावे तो उस साहब ने क्या बताया, तुम्हारे हाथ से जैसे कप बसी फूट जाती है वैसे ये भी पत्थर है, यानी उसने मूर्ति की कल्पना भी नहीं की ना, पत्थर ही माना उसको, वो स्थापना नहीं हुई उसकी। ये अपने मति कल्पना से ऐसे कुतर्क भी करते हैं, तो इनको ये स्थापना का स्वरूप पता नहीं है। भाव भी आता है, वो आगे आएंगे। भाव में, भाव निक्षेप में क्या है, वर्तमान में वैसा करने वाले को भाव निक्षेप कहेंगे, वो बात आएगी। द्रव्य निक्षेप भी है, भाव निक्षेप भी है, उसकी के भेद है ना। नाम स्थापना द्रव्य भाव ये सामान्य से स्थूल रूप से चार होते हैं, और डिटेल में जाएंगे तो छह हो गए। नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भाव, वैसे तो निक्षेप तो अनंत हो सकते हैं, परंतु ये समझने के लिए इतने बेसिक, कम से कम इतने तो होते हैं। अन्य पदार्थों के स्वरूप को जानने की कारण है, संख्यात असंख्यात व अनंत तथा पल, पल यानी वो माप है सेकंड का, समयों का, पल यानी 24 सेकंड को एक पल कहते हैं, ये बात आई थी अपने पहले भाग में। देखो, संख्यात असंख्यात अनंत तथा पल तराजू व कर्ष इत्यादि द्रव्य प्रमाण है, ये नापने के अलग अलग जो साधन है उसको भी यहाँ कह दिया, क्योंकि ये अन्य द्रव्यों के जानने के कारण है। हमें जीव कितने हैं गिनना है, तो अनंत शब्द आ गया, जीव अनंत है। अनंत शब्द के द्वारा अन्य पदार्थ जो जीव, उसको हमने जानना, वो कितने हैं ये जाना कि नहीं जाना। इस तरह से कितना काल बीता, तो उसको हम कहेंगे 10 मिनट हो गए, तो मिनट ये जो माप हुआ, प्रमाण हुआ, उसके आधार से हमने काल कितना, समय कितने व्यतीत हो गए उसको जाना। वैसे तराजू आदि के द्वारा हम यानी तौलने का जो माप है, कितने 2 सेर है, अभी किलो में कहेंगे ना, 4 किलो है, 10 किलो है, जो कुछ है, तो ये 10 किलो जो है, कितनी शक्कर लाई, तो 10 किलो लाई शक्कर को हमने मापा, और उसको कितना है जानने के लिए ये माप हमारे काम में आया। अथवा द्रव्यगत संख्या को छोड़कर द्रव्य ही प्रमाण है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि दंडादिक द्रव्यों से अन्य पदार्थों का ज्ञान देखा जाता है। यानी द्रव्यगत जो संख्या है उसको छोड़कर वो द्रव्य का भी जानना होता है, जैसे जीव को ही जानना, द्रव्य ही प्रमाण है। अब क्षेत्र प्रमाण को कहेंगे, अंगुल वो बिंदी अ के ऊपर लगाना, गो के ऊपर नहीं चाहिए। अंगुल, वितस्ती और किश्कु आदि क्षेत्र प्रमाण है। ये अंगुल की बात हमने देखी ना, ये तर्जनी जो है उसकी चौड़ाई जो, उसको कहते हैं अंगुल। ये अंगुलों में जैसे मनुष्य की हाइट कितनी है, लंबाई, तो अंगुलों में नापेंगे, तो ये अंगुल, वितस्ती है जिसको हम वेद कहते हैं, मराठी में वीत कहते हैं। किश्कु आदि क्षेत्र प्रमाण है, ये उसमें हाथ होगा, धनुष होगा, जो बहुत सारी बातें उसमें आती। समय और आवली आदि काल प्रमाण है, काल का सबसे छोटा माप वो समय है, और असंख्यात समयों की आवली होती है। कितने असंख्यात पता है? जघन्य युक्ता संख्यात इतने समय उसमें होते हैं। ये द्रव्य क्षेत्र काल की बात हो गई। अब जीव भाव प्रमाण और अजीव भाव प्रमाण भेद से, भाव प्रमाण 2 प्रकार है, भाव प्रमाण के 2 भेद, जीव के भाव और अजीव के भाव, इसलिए जीव भाव कहा और अजीव भाव कहा। इनमें अजीव भाव प्रमाण संख्यात, असंख्यात व अनंत के भेद से 3 प्रकार है, और जीव भाव प्रमाण जीव के भावों को कैसे अभी कहा, आभिनिबोधिक, इसका नाम सुना है कभी? मति ज्ञान को ही आभिनिबोधिक कहते हैं। आभिनिबोधिक, श्रुत, अवधि, मनपर्यय और केवल ज्ञान के भेद से 5 प्रकार है। भाव प्रमाण का ना, ये प्रमाण की बात है, ज्ञान प्रमाण कहलाता है, ये ज्ञान प्रमाण ज्ञान के ये 5 भेद है। इस तरह से ये प्रमाण की बात है। उपक्रम यानी ग्रंथ की शुरुआत होती है, उसमें पहले में पहले वो अनुपूर्वी बताया, फिर नाम बताया, उसके बाद प्रमाण हुआ ना, अभी चौथी बात वक्तव्यता। ये उपक्रम के भेदों की बात चल रही है, उपक्रम का चौथा भेद वक्तव्यता है, उसमें स्वसमय वक्तव्यता, वक्तव्यता है ने कथन करने पना जो है उसमें, वक्तव्य है ने कथन करने योग्य, ऐसी उसमें पना जो बता रहे, यानी जिसमें वो प्ररूपणा होती है, व्याख्यान होती है, बताया जाता है, उसको वक्तव्यता कहते हैं। स्वसमय वक्तव्यता, परसमय वक्तव्यता और तदुभय वक्तव्यता के भेद से वक्तव्यता 3 प्रकार की है। यानी इसमें, इस ग्रंथ में कौन सी प्ररूपणा की है, स्वसमय की या परसमय की, क्या दोनों की? स्वसमय ने अभी, समय का अर्थ होता है शास्त्र भी होता है, और समय का अर्थ होता है आत्मा भी होता है। स्वसमय ज्ञानी को कहते हैं और परसमय मिथ्या दृष्टि को कहते हैं, ऐसा भी उसमें अर्थ होता है। स्वसमय में यानी जो जिनेन्द्र भगवान से जो बात चली आई है उसका कथन करना, वो स्वसमय का कहेंगे। पर समय में यानी मिथ्या दृष्टि आदि का जो वर्णन है, वो भले जिनेन्द्र ने ही बताया होगा, उसको भी वो उसका विषय क्या है, क्या बता रहे हैं, तो पर समय का वर्णन कर रहे हैं। फिर उसमें कहेंगे तदुभय में ये ऐसा पर समय है, ऐसा स्व समय है, और इसमें से कौन श्रेष्ठ है उसको भी बताएंगे। तो दोनों का वर्णन हुआ। जैसे समय सार हम पढ़ते हैं, ज्ञानी का भी वर्णन आता है, अज्ञानी का भी आता है, बार बार आता है ना। अभी हम तो पढ़ रहे हो तो हर दो गाथा में ज्ञानी अज्ञानी, ज्ञानी अज्ञानी दोनों की बात आती है। जैसे राग आता है ज्ञानी को भी आता है और अज्ञानी को भी आता है। अज्ञानी राग को अपना स्वरूप मान लेता है और ज्ञानी उसको अपने से भिन्न जानता है। इसमें स्वसमय की भी बात आती है, पर समय की भी बात आती है, और उसमें स्वसमय कैसा श्रेष्ठ है और उसी से कैसे कल्याण है, ये भी बातें बताई जाती है। ये उसकी स्वसमय वक्तव्यता या पर समय वक्तव्यता या उभय, दोनों तद उभय, ये तीन प्रकार हैं। यदि स्वसमय की ही प्ररूपणा की जाती है तो वह स्वसमय वक्तव्यता है। उस ग्रंथ में किसकी प्ररूपणा हो रही है, मात्र स्वसमय की होगी तो स्वसमय वक्तव्यता। यदि पर समय की ही प्ररूपणा की जाती है तो वह पर समय वक्तव्यता है, और यदि दोनों की ही प्ररूपणा की जाती है तो वह तदुभय वक्तव्यता है। आप कहेंगे अकेले पर समय की कैसी होगी वक्तव्यता, तो किसी ग्रंथ में ऐसा भी होता है ना, अन्य मत के जो अलग अलग कथन है उसको भी लेंगे और उसको निराकरण भी कहेंगे, ये कैसा खोटा है ऐसा भी बताएंगे, तो इसको परसमय वक्तव्यता कहेंगे। प्रतिपादन करने के अलग अलग पद्धति होती है। ये आक्षेपिणी विक्षेपिणी वगैरह हमने पहले देखा था ना, पहले अपने छह द्रव्य है, सात तत्व है, उसका स्वरूप है, उसको सबको बता दो, ये हो गया स्वस्वरूप स्वसमय वाले। पर समय में जो उल्टा मानते हैं उस तरफ से, जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कैसे सात तत्वों की भूल कैसी होती है उसको ही बताया पहले, यानी मिथ्या दृष्टि अज्ञानी की भूलें कैसी चलती उसका ही कथन किया। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जो कर रहे हैं ना उससे परिचित है, ज्ञानी की बात से हमें क्या पहले समझेगा, ख्याल है ना। तो अज्ञानी को समझा रहे हैं तो पहले उसकी जो जो बातें चलती है, जैसे कोई रोगी डॉक्टर के पास जाता है तो उसके लक्षण देख के ऐसा, ये तेरे को ऐसा होता है ना वैसा, हाँ, तो उसको विश्वास रहता है, हाँ मुझे ऐसा ही है, फिर उसका उपाय बताएंगे। ऐसे कथन की अलग अलग पद्धति होती है, उसके अनुसार जो कथन किया है उस वैसी उसकी वक्तव्यता पाई जाती है। इस प्रकार वक्तव्यता उपक्रम के स्वरूप की प्ररूपणा की है। ये उपक्रम चार प्रकार का हुआ, अभी पांचवे प्रकार का उपक्रम, अर्थाधिकार उपक्रम। अर्थाधिकार अनेक प्रकार है क्योंकि उसमें संख्या का नियम नहीं है, उसमें कितने ही अधिकार हो सकते हैं ना ग्रंथ में, ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि इतने ही अधिकार होने चाहिए। इस प्रकार अर्थाधिकार उपक्रम के स्वरूप की प्ररूपणा की है। अब इस सबके जितने हमने उपक्रम देखे हैं उसके लिए गाथा बताते हैं, कहा भी है, तिविहाय अनुपूवि दशधाणामं च छविहम्माणं वत्तवदाय तिविहा विविहो अत्थाहियारोय। अनुपूर्वी तीन प्रकार हमने पहले देखा था, पूर्वानुपूर्वी, पश्चादानुपूर्वी और यथा तथानुपूर्वी, यानी क्रम बताना, जिस क्रम से बता रहे उसको अनुपूर्वी कहते हैं। नाम दस प्रकार वो अभी अभी हमने सारे देखे थे, गौण्य नौगौण्य वगैरह वगैरह। प्रमाण छह प्रकार, नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भाव, वो प्रमाण हो गए। वक्तव्यता तीन प्रकार, स्वसमय पर समय और तदुभय। और अर्थाधिकार अनेक प्रकार है। इस प्रकार उपक्रम के स्वरूप की प्ररूपणा की, जब ग्रंथ का अवतार होता है यानी ग्रंथ शुरुआत होती है तो उसमें ये उपक्रम पहले बताया। अब उपक्रम के बाद 134 पृष्ठ पर देखना दूसरा क्या था, निक्षेप। हमने चार बातें देखी थी, उपक्रम, निक्षेप, अनुगम और नय। उसमें से अभी निक्षेप की बात करेंगे। अब निक्षेप स्वरूप की प्ररूपणा करते हैं, वह इस प्रकार है। बाह्यार्थ के विकल्पों की प्ररूपणा, बाह्य अर्थ है ना, बाह्य पदार्थ, उसके विकल्प है ना, उसके भेद, उनके भेदों की प्ररूपणा अथवा अनधिगत पदार्थ के निराकरण द्वारा अधिगत अर्थ की प्ररूपणा का नाम निक्षेप है। अनधिगत, अधिगम यानी ज्ञान, ज्ञात है उसको अधिगत पदार्थ कहेंगे, और जो ज्ञात नहीं है उसको अनधिगत कहेंगे। तो अनधिगत पदार्थ के निराकरण द्वारा अधिगत अर्थ की प्ररूपणा, जो जानने में आ रहा है उसी के अर्थ की प्ररूपणा करना नाम निक्षेप है। प्ररूपणा का नाम निक्षेप है, नाम निक्षेप नहीं, निक्षेप किसे कहना उसकी बात है। देखो, हमने पहले देखा था ज्ञान के जो अलग अलग एंगल से हम जानते हैं, वो ज्ञान के भेद करेंगे, उसके अंश करेंगे, तो उसको नए कहते हैं। और जो जानने में आ रही वस्तु, उसमें जो हम कुछ भेद पाते हैं ज्ञेय में, उसको हम निक्षेप कहते हैं। जैसे नाम निक्षेप हुआ ना, अब वो नाम को जानना, तो उसको हम कहेंगे नाम नए है। वस्तु में जो एंगल है उसको निक्षेप कहेंगे, और उस एंगल को जानने वाला जो ज्ञान है उसको नए कहेंगे। ख्याल आता है कुछ? शंका, ये लौकिक सारा जो व्यवहार है वो निक्षेपों के द्वारा ही तो होता है। जैसे हम किसी का नाम रखते हैं, स्थापना करते हैं, जो कोई अभी वर्तमान में पर्याय नहीं है, फिर भी उस पर्याय रूप से उस द्रव्य को देखना, ये तो द्रव्य निक्षेप होता है। जैसे हम कहते हैं ना, श्रेणिक राजा कहाँ है अभी, वो राजा थोड़ी है, वो तो नारकी है, फिर भी उसके पूर्व भव के नाम से उसको अभी वर्तमान में कहते हैं। और क्या कहते हैं, श्रेणिक राजा जो नरक में है वो हमारे भविष्य के पहले तीर्थंकर है। भविष्य और भूत की दोनों की पर्याय को वर्तमान में उस द्रव्य पर घटित करना, उसको द्रव्य निक्षेप कहते हैं। अब वर्तमान में जो पर्याय है उस रूप से ही उस द्रव्य को देखना कहना, या उस द्रव्य में, अभी निक्षेप की बात है ना, देखना तो नए में चला जाएगा, तो उसको भाव निक्षेप कहेंगे। वर्तमान में जिस रूप है उस रूप, उसको उस एंगल से उसको देखना। तो जो एंगल है द्रव्य में, जो बात है द्रव्य की, जो वर्तमान जो पर्याय है उसको वो भाव निक्षेप कहेंगे। तो शंकाकार पूछता है, निक्षेप के बिना प्ररूपणा क्यों नहीं की जाती, ये निक्षेप की जरूरत ही क्या है। बार बार कोई भी नया विषय आता है तो पहले में पहले नाम स्थापना द्रव्य भाव इतना तो कहते ही कहते हो। उसका समाधान नहीं, क्योंकि उसके बिना प्ररूपणा बन नहीं सकती। प्ररूपणा यानी बताना, जानने के लिए भले आप वस्तु को जान जाओ डायरेक्ट, परंतु उसका कथन करना है तो वस्तु में भी भेद डालेंगे और ज्ञान के द्वारा उसको जानेंगे और उसको कहेंगे, इसलिए वहां निक्षेपों की जरूरत है। वह निक्षेप अनेक प्रकार है, गाथा है। अच्छा, 45 नंबर की गाथा हम पढ़ेंगे। जत्त बहु जाने जो अवरिमियम तत्थ निक्षिवे मयमा, जत्थय बहुम न जान दी चौठयम तत्थ निक्षिव। वह निक्षेप अनेक प्रकार है। हमने तो यहाँ चार या छह ही देखे, नाम स्थापना द्रव्य भाव कहते या नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भाव कहते, परंतु है कितने निक्षेप, अनेक प्रकार के। क्योंकि जहां बहुत ज्ञातव्य हो, बहुत कुछ जानने लायक हो, वहां नियम से अपरिमित निक्षेपों का प्रयोग करना चाहिए। अपरिमित यानी परिमित यानी लिमिट, उसकी कोई मर्यादा। अपरिमित यानी अमर्यादित। बहुत कुछ जानना है तो उसके निक्षेप भी बहुत कुछ होंगे, क्योंकि उतनी उतनी बातें हमें द्रव्य में से जाननी है। और जहां बहुत को नहीं जानना हो, वहां चार निक्षेपों का उपयोग करना चाहिए, यानी मिनिमम ये चार निक्षेप तो हो गए ही। जिसको जानना है उसका नाम तो कुछ रखेंगे, है ना, किसी अन्य में स्थापना भी करेंगे, द्रव्य और भाव भी उस पर घटित करेंगे। ऐसा वचन है, इस प्रकार निक्षेप के स्वरूप की प्ररूपना की है। देखो ये निक्षेप नाम ने ये सारे हमने बहुत ही विस्तार से धवला के प्रथम भाग में देखे, पूरा पहला भाग तो इसी डिस्क्रिप्शन से ही भरा पड़ा है, यहाँ फिर भी दोबारा उन्होंने बहुत शॉर्ट में बता दिया है। अब जो ग्रंथ के अवतार में पहले हमने उपक्रम देखा, फिर निक्षेप, अब अनुगम की बात कर रहे हैं। अब अनुगम के अर्थ को कहते हैं, जहां या जिसके द्वारा वक्तव्य की प्ररूपणा की जाती है वह अनुगम प्रमाण कहलाता है। अधिकार संज्ञा युक्त अनुयोग द्वारों के क्या कहते हैं, जैसे ग्रंथ के हम क्या कहते हैं, ये इतने अधिकार है, उसके चैप्टर से कहते हैं ना अपनी भाषा में, क्योंकि हमें अंग्रेजी नजदीक की लगती है, कोई बात समझनी हो तो पहले अंग्रेजी में समझाएंगे तो जल्दी समझ में आती है। अभी ग्रंथ है तो उसके अलग अलग अधिकारों में उसका वर्णन है, तो जिसका अधिकार ऐसा नाम है उसी को यहाँ अनुयोग द्वार कहा, ये ग्रंथ के इतने अनुयोग द्वार है, तो अनुयोग द्वारों के जो अधिकार होते हैं उनका अनुगम यह नाम है, अनुयोग द्वारों को ही यहाँ अनुगम कहा। यह अनुगम शब्द आपने पहले पढ़ा है, हमने देखा है द्रव्य प्रमाणानुगम, ये ऐसे पहले है द्रव्य प्रमाण यानी संख्या कितनी है उसका अनुगम यानी उसका चैप्टर उसका वो अधिकार, अलग अलग जो अधिकार अलग अलग विषयों पे जो व्याख्यान किया जाता है वो पूरे ही जितना व्याख्यान है उसको अनुगम या अनुयोग द्वार कहते हैं, उसी को अधिकार भी कहते हैं। समय सार में हम देखते हैं ना ये जीव अजीव अधिकार है, ये मोक्ष अधिकार है, ये संवर अधिकार है, अधिकार यानी वो उसका उस विषय का वो अलग व्याख्यान, उसको यहाँ अनुयोग द्वार या अनुगम कहा। जैसे वेदना अनुयोग द्वार के पद मीमांसा आदि अनुगम, ये वेदना अनुयोग द्वार है और उसके जो और भेद होंगे उसके अंदर भी उसको अनुगम कहेंगे। वह अनुगम अनेक प्रकार है क्योंकि उसकी संख्या का कोई नियम नहीं है, इतने ही अनुगम होने चाहिए ऐसी कोई बात नहीं है, विषय समझाने के लिए जितने आवश्यक होंगे उसमें उतने भेद करेंगे। अथवा जिसके द्वारा जीवादिक पदार्थ जाने जाते हैं वह अनुगम प्रमाण कहलाता है, ये उसकी दूसरी परिभाषा है। अनुगम प्रमाण किसे कहते हैं, ये प्रमाण की बात है ना, जानने को ही यहाँ प्रमाण का है, अनुगम प्रमाण का उसका समाधान, निर्बाध ज्ञान से विशिष्ट आत्मा को अनुगम प्रमाण कहते हैं, यहाँ आत्मा को ही अनुगम प्रमाण कहा। कैसे आत्मा है, निर्बाध ज्ञान से जो युक्त है, निर्बाध ज्ञान से जो विशिष्ट है यानी जिसके निर्बाध ज्ञान पाया जाता है, निर्बाध यानी बाधा रहित ऐसे जो ज्ञान है, ऐसे आत्मा को ही अनुगम प्रमाण कहा। यानी जो मिथ्या ज्ञानी है ऐसे आत्मा को हम प्रमाण नहीं कहेंगे, उसके ज्ञान को भी प्रमाण नहीं कहेंगे, क्योंकि सम्यक ज्ञानम प्रमाणम ऐसा आता है वचन, सम्यक ज्ञान ही प्रमाण ज्ञान है, उसी की बात यहाँ देखते लिखते आगे। संशय विपर्य और अनध्यवसाय ज्ञान से विशिष्ट यानी ज्ञान से युक्त आत्मा के प्रमाणता नहीं हो सकती। संशय ज्ञान यानी ये है कि वो है, अरे ये चांदी है कि सीप है, ऐसे उसका ज्ञान तो दो विरुद्ध कोटि के उसमें दोलायमान होता है, निर्णय नहीं कर पाता है, ऐसी बात नहीं, अरे ये क्या क्या है जरा ठीक निर्णय तो करो, उसको संशय नहीं कहते, अरे ये चौक है क्या कुछ मिठाई है, ये बिल्कुल भिन्न ऐसे पदार्थों में उसका वो चलता रहता है पेंडुलम की तरह, उसको संशय कहते। विपर्य ने जो चीज़ सामने उसके बिल्कुल उल्टा कुछ मान लेना, उसको उसका जानना, जानने के भेद नहीं या जानना कहना मानना नहीं है, उसको विपर्य कहते। और अनध्यवसाय ने कुछ है इतना तो ज्ञान हुआ परंतु क्या है इसका उसका सही जानकारी नहीं है, उसको अनध्य व्यवसाय कहते हैं। संशय विपर्य और अनध्य व्यवसाय ज्ञान से, ये मिथ्या ज्ञान के तीन भेद हैं। यानी वो दोष जिसके हैं, ऐसे संशय है जहाँ विपरीतपना है, और अनध्यवसाय है, उस ज्ञान को हम सम्यक ज्ञान नहीं कहेंगे। ऐसे ज्ञान से युक्त आत्मा के प्रमाणता नहीं हो सकती, यानी वह आत्मा प्रमाण नहीं है, क्योंकि उसका ज्ञान प्रमाण नहीं है। प्रमाण यानी सही ज्ञान नहीं है वो। क्यों नहीं? क्योंकि संशय और विपर्य के बाधा युक्त होने से ये निर्बाध क्यों कहा? बाधा कौन सी है? संशय और विपरीतपना, यही बाधा है ज्ञान में। उसको वो ज्ञान कहाँ हो रहा है? वो उल्टा सुलटा कुछ जान रहा है ना, उसका वो सही ज्ञान है ही नहीं है, इसलिए उस ज्ञान को प्रमाण भी नहीं कहेंगे। संशय और विपर्य के बाधा युक्त होने से उनमें निर्बाध विशेषण का अभाव है, तथा अनध्यवसाय के अर्थबोध का अभाव है। अर्थबोध यानी पदार्थ का ज्ञान, कुछ है ही इतना ही ज्ञान हुआ, मगर वो पदार्थ क्या है कैसा है कुछ उसके बारे में कुछ जानना नहीं हुआ। हम कहते हैं अरे चल रहा था कुछ तो लगा पैर में, अरे क्या लगा कुछ तो, ये कुछ कह नहीं सकता, कुछ तो था, ये अनध्यवसाय हुआ। शंका, ज्ञान को ही प्रमाण स्वीकार क्यों नहीं करते? जानने मात्र को प्रमाण क्यों नहीं कहते? ये सही जानना को ही ये संशय विपर्य और अनध्यवसाय से रहित ऐसे ज्ञान को उस प्रमाण क्यों कहते? बस जानना हुआ उसको प्रमाण कह दो, भले वो संशय से हो या कुछ हो, जानना तो हो गया कि नहीं। हा? था वो ठाना यानी वो वृक्ष का कुछ थड, और उसको जानना हमने देखा था, हाँ ये कोई पुरुष खड़ा है वहां, जाना ना हमने, अरे कहाँ जाना, उसको उल्टा जाना ना, उसको थोड़े जानने कहते। तो ऐसे जानने को प्रमाण क्यों नहीं कहते, ऐसा प्रश्न है। उसका समाधान, नहीं कहते उसका स्वीकार, प्रमाण रूप से उसका स्वीकार नहीं है। उसको ज्ञान नहीं कहते ऐसा नहीं कहा, वो तो मिथ्या ज्ञान तो है ही, वो संशय ज्ञान है ही, परंतु उसको प्रमाण नहीं कहते। क्योंकि जानातीति ज्ञानम, इस निरुक्ति के अनुसार जो जीवादि पदार्थों को जानता है वह ज्ञान अर्थात आत्मा है, उसी को प्रमाण स्वीकार किया गया है। जानने वाले को प्रमाण कहा, उल्टे जानने वाले को या सही नहीं जानने वाले को ज्ञान नहीं कहा। उत्पाद व व्यय स्वरूप किंतु स्थिति से रहित ज्ञान पर्याय के प्रमाणता स्वीकार नहीं की गई, क्योंकि स्थिति से रहित ज्ञान पर्याय ने अभी वो ध्रुव्यता कुछ माना ही नहीं है। ज्ञान गुण तो कायम है ना वहां पर, उसी को स्वीकार नहीं किया, बस उत्पाद व्यय वाले को तो उसको प्रमाण नहीं स्वीकार करते, क्योंकि उत्पाद व्यय और द्रव्य रूप लक्षण त्रय का अभाव होने के कारण अवस्तु स्वरूप उसमें परिच्छित्ति रूप अर्थ क्रिया का अभाव है। कोई ऐसे कहते ना बस उत्पाद उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय इतना ही क्षणिक ही है सब, ध्रुव कुछ है ही नहीं है। ये अन्यमति की जो कुछ मान्यता है उसके निषेध के लिए कहते हैं उत्पाद व्यय और द्रव्य तीनों मिलकर वस्तु सिद्ध होती है, जिसमें द्रव्य नहीं वो अवस्तु स्वरूप है, ऐसा कुछ है ही नहीं है। उत्पाद हुआ किसमें से और व्यय होकर क्या हुआ उसका? कुछ है ही नहीं है द्रव्य वगैरह, कुछ ध्रुव वस्तु ही नहीं है, तो उत्पाद कहाँ से होगा? मैंने आपको कहा मुझे अलंकार बनाने, बंगड़ी बनानी है, आपने बोला लाओ सोना, हमारे पास सोना नहीं है परंतु बंगड़ी बनाओ, तो काहे में से बनेगी? वो ध्रुव वस्तु तो कुछ होगी ना, तभी तो उसमें से एक पर्याय का उत्पाद होगा दूसरे पर्याय का व्यय हो जाएगा। तो यहाँ कहते हैं उत्पाद और व्यय स्वरूप है परंतु स्थिति किसी के है ही नहीं है, तो ऐसी अगर कोई ज्ञान पर्याय माने तो उसका स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि उत्पाद व्यय और द्रव्य रूप लक्षण त्रय का अभाव होने के कारण अवस्तु स्वरूप ऐसे जो कुछ है उसमें परिच्छित्ति रूप अर्थ क्रिया, परिच्छित्ति यानी जानना, ज्ञान होना, परिच्छित्ति रूप अर्थ क्रिया का अर्थ होता क्या है? अर्थ क्रिया, ये शब्द सुना है कभी? वस्तुत्व गुण क्या बताता है? प्रत्येक द्रव्य में अपनी अपनी प्रयोजनभूत क्रिया करने का जो सामर्थ्य, अर्थ क्रिया कारित्व होता है। अर्थ यानी पदार्थ, क्रिया यानी उसका जो हर समय पर्याय रूप कार्य चल रहा है, वो करने की शक्ति उसी उसी द्रव्य में होती है। अब यहाँ ज्ञान रूप जो कार्य है वो जीव द्रव्य का है, ये उसकी अर्थ क्रिया है। जीव द्रव्य की यानी आत्मा की, ज्ञान 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 यानी जानना 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 जानना, ये उसकी अर्थ क्रिया है। तो अर्थ क्रिया का यदि वहां कोई ध्रुव वस्तु ही नहीं होगी तो ये जानने का कार्य कैसे होगा? जाना और उसी समय छूट गया तो हमने जाना था 10 मिनट पहले, ये भी कौन कह सकेगा? हमें बचपन की यादें हैं, याद जिसको हम कहते हैं मेमोरी, या ये सीखना सारा बेकार हो जाएगा? यदि ज्ञान क्षणिक ही है और क्षण भर में उत्पन्न होकर नष्ट होता है, तो उसका जो ध्रुव रूप वहां जो कोई संस्कार की भी या ज्ञान की भी हमने जो पढ़ा है वो अभी हमारे स्मृति में भी है ना कुछ, या हम याद कर सकते हैं उसको, वो कब बन सकता है? ध्रुव वस्तु के अभाव में तो वो नहीं बन सकता है। तो उत्पाद, व्यय और ध्रुवता तीनों को ही स्वीकार करेंगे तो ही वस्तु सिद्ध हो जाती है।
यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, ज्ञान जो गुण है उसको यहाँ ध्रुव बताया जा रहा है, और उसकी जो जानन रूप जो हर समय में नई नई पर्याय और पुराने पर्याय का व्यय है उसमें उत्पाद व्यय लगा रहे, यानी जानने रूप जो क्रिया हो रही है हर समय नई नई, वह तो उसका उत्पाद है, और जो उसी समय पूर्व पर्याय का जो व्यय है इसके अलावा ज्ञान गुण कायम टिकता है। तो वो हमने जो बचपन में जो कुछ शरारत की थी अभी भी हमें याद है, यानी जो ज्ञान है वह कायम टिका हुआ है, पर्याय भले गई हो। इसलिए यहाँ पर ये जो वस्तु है वह तीन स्वरूप है बताया ना, त्रयात्मक है, उत्पाद व्यय और ध्रुवता। यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि कोई ऐसा मानता है कि भाई वस्तु कायम नहीं है, सिर्फ पर्याय ही पर्याय है, तो ऐसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि अभी जो जाना है वो दूसरे समय जानने वाला कोई दूसरा ही होगा, पहले का और दूसरे का कोई संबंध ही नहीं है। नहीं ख्याल में आया? देखो मैंने खून किया तो दूसरे समय में टिका ही नहीं ना, खून करने वाला तो निकल गया और सजा करने वाला तो हालत बलता हो गया, सब क्षणिक है, इसमें ये गड़बड़ी होती है।
हाँ, देखो इसीलिए क्या सिद्ध करते हैं, अर्थ क्रिया का अभाव तथा स्थिति रहित ज्ञान पर्याय को प्रमाणता स्वीकार करने पर, यानी ध्रुव रूप से उसमें कुछ रहा ही नहीं, बस जाना और छूट गया। यदि ऐसा हो तो स्मृति, स्मृति यानी स्मरण आने कालांतर के बाद, स्मरण में हम मेमोरी जिसको कहते हैं, स्मरण में जो आती है बात, क्योंकि वो तो बीत चुकी है कोई घटना, परंतु अभी उसको हम क्षण मात्र में याद आती है ना कोई बात, बचपन में ऐसा हुआ था, जैसे अभी श्रवण बेलगोला का महामस्तक का अभिषेक अभी फरवरी 2006 में होने वाला है, तो हमें याद आया पहले वाली बात जो 1953 में मैं जब तीसरी स्टैंडर्ड में थी तब मैंने वहां का देखा था, वो सारी वैसी स्मृति अभी याद आती, वैसे के वैसे वहां जब वो उस समय जो कुछ देखा था उसकी बातें याद, ये उसमें कुछ तो स्थिति रूप से पड़ा है ना उसमें, ये उसके बिना ये कैसे याद आ सकता है? जिसको हम कुछ अलग अलग नाम देते हैं, अभी धारणा है वो भी पर्याय में कंटिन्यूएशन में वो चलता है ना, कुछ ज्ञान की कंटिन्यूटी भी चल रही है वहां हर पर्याय में वो है, तो ऐसी कंटिन्यूटी अगर नहीं रहेगी, बस ज्ञान हुआ छूट गया, ज्ञान हुआ छूट गया, तो ये मेमोरी कैसे हो जाएगी? सर्वथा भिन्न भी नहीं है ना वो, इस तरह से उसको उसको ले जाना। प्रत्यभिज्ञान भी नहीं हो सकता। प्रत्यभिज्ञान किसको कहते हैं? सामने कोई चीज देखी, इसको जोड़ रूप ज्ञान कहते हैं। वर्तमान के किसी पदार्थ को जानकर किसी अन्य पदार्थ को याद आता है, और ये ऐसा था या उसका अलग था, ऐसा याद आना। प्रत्यभिज्ञान भी दो प्रकार के, जैसे मैंने काली गाय देखी, उसको देखकर मुझे याद आया बचपन में हमारे घर में ऐसी ही सफेद गाय थी। प्रत्यभिज्ञान तो हुआ, परंतु उसमें जो कुछ यानी डिफरेंस था ना, वो भी ख्याल में आ गया। ऐसा नहीं कि वही से ही काली ही थी, इतने जानने को ही प्रत्यभिज्ञान नहीं कहते। गाय को तो स्मरण किया परंतु वो काली नहीं थी, वो सफेद थी। तो ये सारे जोड़ रूप ज्ञान जिसको कहते हैं, वर्तमान का ज्ञान और पूर्व का कुछ स्मरण में आना और उसके साथ उसकी कंपैरिजन होना, इसको प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। और अनुसंधान, अनुसंधान करने हम कहते ना, उसके साथ मिलान करना आदि, जो पहले जाना होगा उसी के साथ तो अभी इसका मिलान करेंगे। हम कोई चीज़ देखते हैं और हमें कोई विशिष्ट कलर चाहिए, नहीं ये नहीं, हमको वो वाला चाहिए जो हमने पहले पसंद किया था, तो ये अनुसंधान कब बन सकता है? जो पहली चीज़ ज्ञान में है तभी तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं। या कोई ऐसा हाइट वाला है और दूसरा कोई ठींगना है, तो हम क्या कहने, अरे ये उससे ये ठींगना दिखता है। तो ये जो कंपैरिजन दोनों में होती है, तो पहले का ज्ञान अभी वहाँ मौजूद है ना, कि पूरा विनाश हो गया उसका, उत्पाद होकर विनष्ट ही पूरा हो जाता, तो हम कैसे ये स्मृति प्रत्यभिज्ञान अनुसंधान ये कुछ बन नहीं सकता था, ये बात यहाँ बताना चाहते हैं। तो ये प्रमाण ज्ञान में तो ये सारा होगा, स्मृति प्रत्यभिज्ञान वगैरह वो सब उसके होंगे वेद। वह प्रमाण प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण के भेद से दो प्रकार है। ये सारे प्रमाद के प्रमाण के भेद हैं, स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्क अनुमान आगम, ये सारे प्रमाण हैं, प्रमाण के भेद है ये, सही ज्ञान है वो प्रमाण ज्ञान है। अब ये प्रमाण जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण, उसके भी दो भेद हैं। उनमें प्रत्यक्ष, सकल प्रत्यक्ष और विकल प्रत्यक्ष से के भेद से दो प्रकार है। प्रत्यक्ष ने वहाँ कोई इंद्रिया मन आदि के संबंध नहीं है, उसके निमित्त नहीं बनता। प्रत्यक्ष ने अक्ष ने आत्मा, आत्म प्रदेशों के द्वारा जो डायरेक्ट जानना होता है, उसको स्पष्ट जानना है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। तो प्रत्यक्ष में भी दो भेद, सकल प्रत्यक्ष जो केवल ज्ञान है, और अभी आपको ख्याल में आया होगा विकल प्रत्यक्ष किसको कहेंगे, हाँ अवधि ज्ञान और मनोपरे ज्ञान, ये विकल प्रत्यक्ष है। संपूर्ण पदार्थों को भी नहीं जानते, बस रूपी पदार्थों को जानते हैं एक बात, और संपूर्ण आत्म प्रदेशों के द्वारा उसका ये जानना नहीं होता है, विशिष्ट आत्म प्रदेशों के द्वारा ही जानते हैं। तो ये प्रत्यक्ष में भी सकल प्रत्यक्ष और विकल प्रत्यक्ष के भेद से दो प्रकार है। केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है, क्योंकि वह त्रिकाल विषयक तीनों काल संबंधी अनादि से अनंत काल तक के समस्त पदार्थों को, जीव अजीव जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल सभी पदार्थों को विषय करने वाले, और कैसा है अतींद्रिय, किसी इंद्रिय की वहां जानने में कोई उसका आवश्यकता भी नहीं और उसका कोई वहां निमित्त भी नहीं बनता है। अक्रम वृत्ति क्षयोपशम ज्ञानी वो क्रमवृत्ति से जानता है, उसमें ज्ञान में भी क्रम होता है, क्रम क्रम से हम एक चीज के बाद दूसरी चीज को जानते हैं, और दर्शन और ज्ञान में भी क्रम पड़ता है। और केवली के ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग एक साथ होता है, और तीनों काल के समस्त पदार्थों के द्रव्य गुण पर्याय उसके अविभाग प्रतिच्छेद है, एक समय में प्रत्यक्ष जानते हैं, एट ए टाइम एक साथ युगपत जिसको कहते हैं। यही तो ये केवल ज्ञान की विशेषता और महानता है। अक्रम वृत्ति और व्यवधान से रहित, व्यवधान यानी उसमें कोई विघ्न नहीं है, बाधा नहीं है। जैसे हमें जानना तो बहुत चाहते हैं, चाहने से तो कोई जानना होता नहीं है, हा? चाह तो विकारी पर्याय, फिर भी सामने कोई चीज है फिर भी उसमें व्यवधान होता है ना, क्षोभशम कम है किसी का, ज्ञानावरण के क्षोभशम है, ये कर्मों का व्यवधान वहाँ निमित्त रूप से है, तो सबका जानना नहीं होता और थोड़ा सा जानना होता है, ये उसमें व्यवधान है। ऐसे व्यवधान से रहित है, व्यवधान कुछ भी नहीं है, इसलिए उनका ज्ञान कैसा है, अमर्याद है, अनंत है, उसमें कोई मर्यादा लिमिट सीमा नहीं है, इतने को ही जाने, ऐसी कोई उसमें रुकावट ही नहीं है। ज्ञान स्वभाव है और स्वभाव है और वहाँ निमित्त रूप से भी कोई व्यवधान नहीं है, तो उनके जानने में अभी कोई रुकावट नहीं है, सब कुछ जान लेते हैं। और आत्मा एवं पदार्थ की समीपता मात्र से प्रवृत्त होने वाला है, निर्व्यवधानात आत्मार्थ सन्निधान मात्र प्रवर्तनात। व्यवधान से रहित उसका अर्थ होता है क्या? आत्मार्थ सन्निधान मात्र प्रवर्तनात्। आत्मा एवं पदार्थ की समीपता मात्र से प्रवृत्त होने वाला है, इसका अर्थ ख्याल में नहीं आया मुझे। हम देखेंगे कहीं उसका आगे पीछे रेफरेंस आए तो देखेंगे फिर उसको। ऊपर लिखा ना निर्व्यवधानात आत्मार्थ सन्निधान मात्र प्रवर्तनात्। ये आत्मा एवं पदार्थ लिखा है ना, तो आत्म पदार्थ की समीपता मात्र से प्रवृत्त होने वाला ऐसा चाहिए। यानी आत्मा से ही डायरेक्ट जानता है ऐसा, एवं नहीं चाहिए वहां आत्म पदार्थ की, ऐसा मुझे लगता है, फिर भी देखेंगे। क्योंकि जिसको जानना है उसकी समीपता की कोई जरूरत नहीं, आत्मा आत्मा में लीन होते हुए संपूर्ण पदार्थों को जानता है। अब हम उसके लिए गाथा जो लिखी है उसको पढ़ेंगे। शायिकमेकम अनंतम त्रिकाल सर्वार्थ युग पदवभासम निरतिशयम अत्ययच्युतम व्यवधानम जिन ज्ञानम अव्यवधानम। निरतिशयम अत्ययच्युतम अव्यवधानम जिन ज्ञानम। जिन भगवान का ज्ञान क्षायिक, क्षायिक ज्ञान कहलाते हैं, अनंत ज्ञान है, केवल ज्ञान है। क्षायिक क्यों कहा उसको, कौन से कर्म के क्षय से केवल ज्ञान होता है? अकेले केवल ज्ञानावरण का क्षय हो चुका, मति ज्ञानावरण बाकी है, हाँ क्या होगा? पांचों ज्ञानावरण के क्षय से केवल ज्ञान होता है। एक अर्थात असहाय, असहाय जो अनाथ है, बिचारा है, गरीब है, उसको हम असहाय कहते हैं, वो असहाय नहीं है। एक है ना, उसको किसी अन्य सहाय की जिसको गरज नहीं है, जरूरी नहीं है। कौन से सहाय? जैसे हमें तो इंद्रियों के निमित्त बनता है, इंद्रिया हमारा ज्ञान नहीं उत्पन्न करते, इंद्रियों के निमित्त है, प्रकाश होना चाहिए, अभी चश्मा निकाल दो तो नहीं पढ़ सकते, तो ये हम बेचारे हैं, हम सहाय वाले हैं जिसको आधार ले लेके चलना पड़ता है, और वो तो असहाय है, अनंत है, कभी खूटने वाला भी नहीं है और उसको कोई लिमिट नहीं है, अमर्यादित जिसको कहते हैं। तीनों कालों के सब पदार्थों को एक साथ प्रकाशित करने वाला है। पदार्थ तो तीनों काल रहते ही है, परंतु तीनों काल में भूत वर्तमान और भविष्य की समस्त पर्यायों को एक साथ जानते हैं, सभी पदार्थों के समस्त गुण पर्यायों को, अकेले पर्यायों को नहीं, उनके जो अविभाग प्रतिच्छेद हो गए, शक्ति के अंश अलग अलग, उन सबको एक साथ जानेंगे। और कैसा है, निरतिशय अतिशय वाला है, विनाश से रहित, ये हर समय केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान, उसमें उत्पाद व्यय होगा कि नहीं होगा, है हर समय का नया है, परंतु कभी केवल ज्ञान खूट कर अन्य कोई ज्ञान हो जावे, शाइक में से अभिक्षोपम हो जाए, ऐसा कभी नहीं बनेगा। अनंत काल तक केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान चलता रहेगा, इसलिए यहाँ विनाश से रहित कहा। और व्यवधान से विमुक्त है, उसमें कोई बाधा है नहीं है, ये बात यहाँ बता दिया। अवधि और मनपर्य ज्ञान विकल प्रत्यक्ष है, ये प्रमाण ज्ञानों की बात है ना, इसलिए यहाँ इसको फिर दोबारा लिया है। पहले इस ग्रंथ के शुरू में नमो जिनानम कहा, फिर नमो ओहि जिनानम कहा, तो वहाँ हमने अवधि ज्ञान मनपर्य ज्ञान केवल ज्ञान सा विस्तार से स्वरूप देखा ही था। यहाँ ज्ञान को प्रमाण कहा है, इसलिए इन ज्ञानों के नाम फिर दोबारा लिए। अवधि और मनपर्य ज्ञान विकल्प प्रत्यक्ष है, क्योंकि उनमें सकल प्रत्यक्ष का लक्षण नहीं पाया जाता। सकल प्रत्यक्ष क्या है, संपूर्ण आत्म प्रदेशों से जानते और संपूर्ण पदार्थों को भी जानते। शंका का वह भी कहां से जाना जाता है, अवधि और मनपर्य सकल प्रत्यक्ष नहीं है, ये आपने कैसे जाना। समाधान, क्योंकि उक्त दोनों ज्ञान मूर्त द्रव्यों में ही प्रवर्तमान है। मूर्त द्रव्य कौन से है इस विश्व में, पुद्गल द्रव्य, तो पुद्गल द्रव्यों को ही जानते हैं। अवधि में हमने देखा था द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित रूपी पदार्थों को जानने वाले ज्ञान को अवधि ज्ञान का है, वो भी विकल प्रत्यक्ष है। और मनपर्य ज्ञान में क्या देखा था, दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों संबंधी जो कुछ है उसको जानते हैं, तो दोनों का विषय तो रूपी हुआ। और कैसे, विनश्वर है, क्यों, मनपर्य ज्ञान जो कौन सा वाला, वो विपुलमति वाला, उसको तो अप्रतिपाती कहा, और यहाँ क्या लिखते हैं, विनश्वर है, क्यों अशोक भाई बताओ। हाँ नहीं, वो कभी नहीं पढ़ता विपुलमति, तो बस विपुलमति मनपर्य ज्ञान से कोई प्रतिपात नहीं होता, वो छूट नहीं जाता उसका, फिर यहाँ विनश्वर क्यों कहा। हाँ केवल ज्ञान होगा तो क्या होगा, मनपर्य ज्ञान नहीं रहेगा, है ना, उसको विनश्वर कहा। जैसे केवल ज्ञान को कैसे कहा, अविनश्वर, एक बार उत्पन्न होता है तो वैसी की वैसी वो पर्याय चलती रहती है अनंत काल तक, यह विनश्वर है। तथा तीन काल विषयक अनंत पर्यायों से संयुक्त उन मूर्त पदार्थों में भी उनकी पूर्ण रूप से प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है। पूर्ण रूप से प्रवृत्ति नहीं है, सर्वावधि ज्ञान जो उत्कृष्ट में उत्कृष्ट अवधि ज्ञान है, जो परमाणु तक को जानता है, वो भी अनादि अनंत काल का परमाणु को जानेंगे कि नहीं जानेंगे, उसके पर्याय को। हाँ असंख्यात लोक, वहाँ भी काल की लिमिट आ जाएगी, असंख्यात लोक में जितने प्रदेश है उतने समयों तक पूर्व का और भविष्य का जानेंगे, और असंख्यात लोक इतना क्षेत्र में यदि पुद्गल होता तो उतने भी जानने की उनकी शक्ति है। अभी पुद्गल एक लोक में है तो वो क्या करे, परंतु उनकी शक्ति इतनी है, फिर भी वो केवल ज्ञान जितनी उतनी है ही नहीं है, उसमें मर्यादा है ना, अमर्यादित ज्ञान वो नहीं है, मर्यादा सहित वाला है। शंका, इंद्रियों की अपेक्षा रहित अवधि मनपर्य और केवल ज्ञान के प्रत्यक्षता कैसे संभव है, हम तो इंद्रियों के द्वारा वो भी थोड़ा कुछ जानते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कोई जीव प्रत्यक्ष ज्ञानी कैसे हो सकता है बिना इंद्रिय के, हम तो आंखों के बिना कोई जान देख सकता है, ये तो हमें पता ही नहीं और स्वीकार भी नहीं है, तो ये कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञानी कोई कैसे हो सकता है? उसका समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि अक्ष शब्द का अर्थ आत्मा है। अतएव अक्ष अर्थात आत्मा की अपेक्षा कर जो प्रवृत्त होता है वह प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष अक्ष के द्वारा ही जो प्रवृत्त होता है। इंद्रियों से भी जो जानने में, इंद्रिय ज्ञान जिसको कहने में आता है, वह भी आत्मा ही का ज्ञान है, इंद्रियों का नहीं है। इंद्रियां तो जड़ है, तो जड़ के कारण ज्ञानी को ज्ञान हो जावे, आत्मा ज्ञानी ने आत्मा को ज्ञान हो जावे, ये कैसी बातें हो सकती है? वो तो निमित्त मात्र से वहां उसकी उपस्थिति होती है, और निमित्त परद्रव्य में या उसके कार्य में कुछ भी हेरा फेरी गड़बड़, थोड़ी प्रेरणा देना, पुशअप करना, हेल्प मदद असर कुछ नहीं करता, उसी को तो निमित्त कहते ना, उसकी उपस्थिति मात्र होती है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के कार्य में कुछ नहीं करता है, ये तो अपनी विषय चल रहा है, अभी समय सार में चल रहा है ना अभी अपना विषय। तो कहते हैं वह प्रत्यक्ष है, इस निरुक्ति के अनुसार अवधि मनपर्य और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है, अतएव उनके प्रत्यक्षता सिद्ध है, उनका यह स्पष्ट ज्ञान होता है और डायरेक्ट आत्मा के प्रदेशों से वो जानते हैं। अब ये पांच में से दो रह गए, मति और श्रुत ज्ञान। मति और श्रुत के भेद से परोक्ष दो प्रकार है। शंका, परोक्ष का क्या स्वरूप है? उपात्त और अनुपात्त इन कारणों की प्रधानता से जो ज्ञान होता है वह परोक्ष है। अभी उपात्त और अनुपात्त पदार्थ है क्या, उसको अभी बताते। यहां पर, यहां उपात्त शब्द से लिखा ना पहले, उपात्त कारण की प्रधानता से जो ज्ञान होता है उसमें उपात्त कारण भी है और अनुपात्त कारण भी है। उसमें उपात्त कारण किसको कहा? तो उपात्त शब्द से इंद्रिया मन तथा अनुपात शब्द से प्रकाश व उपदेश आदि का ग्रहण किया गया है। ये दोनों ही निमित्त में ही लेना है। वहां लिखा था ना कारणों की प्रधानता, ये कौन से कारण है? निमित्त कारण है। उसका जो उपादान कारण तो जीव ही है, परंतु यहाँ उसके निमित्तपना बनता है, तो ये भी उसमें भी कारणों की विविधता दिखाने के लिए दो प्रकार बताए। उपात्त में तो इंद्रिया आदि लिया, इंद्रिया और मन, और अनुपात्त में प्रकाश, या कोई चीज हम पढ़ते पन समझते नहीं तो हम कहाँ, वहाँ उपदेश के द्वारा भी समझ में आता है, तो उपदेश को भी उसमें लिया निमित्त में। इनकी प्रधानता से होने वाला ज्ञान परोक्ष कहलाता है। जिस प्रकार गमन शक्ति से युक्त होते हुए भी स्वयं गमन करने में असमर्थ व्यक्ति का लाठी आदि आलंबन की प्रधानता से गमन होता है, किसी व्यक्ति ने लाठी पकड़ पकड़ कर वो चल रहा है, तो लाठी उसको चलाती है या चलने वाला स्वयं वह जीव है? अशोक भाई, लाठी यदि उसको चलाती है तो हमने लाठी ये कपाट के बाजू में रख दी, तो कपाट को भी चलना चाहिए। लाठी कोने में रख देते ना हम, तो दीवार भी चलना चाहिए लाठी के सहारे, तो ऐसा तो देखने में नहीं आता है। तो चलने वाला तो जीव है, फिर भी वहां लकड़ी का आसरा ले लेकर चलता है, तो ये उसकी कमजोरी को बताने वाला है, लाठी नहीं चला रही उसको।
यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या कहा है, चलने की शक्ति वाला, तो ये दीवार है उसको चलने की शक्ति है क्या? नहीं बोलो मंजू बहन। हाँ, आप बराबर कह रही हैं कि वह पुद्गल है और पुद्गल में भी क्रियावती शक्ति है, लेकिन इस पर से ये बात सिद्ध होती है जहाँ उपादान से कार्य होगा तब अन्य वस्तु को निमित्त कहने में आएगा। अब यहाँ तो स्वयं उस किसी बूढ़े व्यक्ति को या अशक्त व्यक्ति को चलने की तो सामर्थ्य है, स्वयं चल रहा है, लेकिन फिर भी उसमें लाठी निमित्त रखिए कि वो ठीक ठाक चल रहा है। लाठी
उदाहरण में लेना है वो।
हाँ। यहाँ देखो बात तो ऐसी है कि लाठी ना इंसान को चलाती है और ना इंसान लाठी को पकड़ता है, वो और एक गड़बड़ है। ये ऐसी स्वतंत्रता ज्ञान में रहनी चाहिए, ख्याल में आया ना। यहाँ निमित्त की तो बात चल रही है, चलो।
यानी यहाँ आलंबन की प्रधानता से उसको बताया, आलंबन लिया ना उसने लाठी का, शक्ति तो उसकी स्वयं की है परंतु वो कमजोर है इसलिए उसने किसी का आलंबन लिया, लाठी उसको नहीं चला रही है। वैसे यहाँ भी ज्ञान पर घटाएंगे, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान की बात चल रही है यहाँ पर। उसी प्रकार मति ज्ञानावरण और श्रुति ज्ञानावरण का क्षोभशम होने पर यहाँ संयोग में ये कर्म भी है और उसका क्षोभशम हो रहा है, कुछ उघाड़ रूप है और कुछ, अरे हो गया समय, कल करेंगे उघाड़ की बात। अब दृष्टांत तो हो गया, उसका सिद्धांत घटाएंगे कलम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो। प्रेरणा बेन।